हे कृष्ण, श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 6 वर्स नंबर 47, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पर सर्वोच्च शब्द यूज हुआ, यानी योगी। हमारे माइंड में ऐसा होता है कि योग का मतलब वो भी होता है जो ब्रह्म के साथ अपना संबंध जोड़ते हैं, वो भी होता है जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं, क्योंकि योग का मतलब होता है कि संबंध जोड़ना। लेकिन सर्वोच्च दशा क्या है, जैसा हमने पढ़ा कि वास्तव में भगवान के स्वरूप के साथ, भगवान के रूप के साथ अपना प्रेम, भगवान के साकार स्वरूप के साथ अपना प्रेम निर्माण करना, भगवान के संपूर्ण फेसेस को, भगवान के सारे रूपों को स्वीकार करना और अपने आप को भगवान का सेवक मानना, भगवान का दास मानना, कोई भी भगवान के साथ संबंध जोड़ना, वात्सल्य रस, सखा रस, माधुर्य रस, कोई भी रस में भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ना, ये है योग का सर्वोच्च उद्देश्य। तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये केवल भक्ति योग से ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में होती है। श्वेता सूत्र उपनिषद 6.23। यस्य देवी परा भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्य ते कथिता यथा प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं के हृदय में श्री कृष्ण तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। अत्यंत ही सुंदर श्लोक है कि सबसे पहली आवश्यकता क्या है, कि आपको अपने गुरु और कृष्ण में संपूर्ण श्रद्धा टिकानी है, पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। इस तरह से जब श्रद्धा हो जाएगी ना, यस्य देवी परार भक्ति यथा देवी तथा गुरु तस्य कथिता ही आता प्रकाशन्ते, उस वो क्योंकि महान है, महात्मा, उसके हृदय में वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्तिरस्य भजनम तद्दिनामुत्रपादिनये रास्तेहीनामुष्मिन् मनः कल्पनमेतदेव निष्कर्म्यम्। अर्थात भक्ति का अर्थ है कि भगवान की सेवा जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होता है, ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। यानी भक्ति का मतलब श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये नहीं होता है कि हम भक्ति के द्वारा अपनी संतुष्टि चाहते हैं, बल्कि भक्ति का मतलब क्या होता है कि भौतिक लाभ की कोई इच्छा ना हो और केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य किया जाए। नैष्कर्म्य का यही प्रयोजन है। गोपाल तापनी उपनिषद। नैष्कर्म्य का मतलब ये नहीं है कि भक्त कार्य करना छोड़ देता है, इच्छा करना छोड़ देता है, ऐसा नहीं। नैष्कर्म्य का मतलब होता है कि वो अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा छोड़कर देहात्म बुद्धि से आगे आकर अपनी आत्मा को केवल भगवान को संतुष्ट करने से संतुष्ट करता है। ऐसा नहीं सोचता कि मैं अपनी आत्मा को यदि परमात्मा में लीन कर दूंगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा, नहीं। नैष्कर्म्य का मतलब ये होता है कि हम वास्तविक स्वरूप को जानकर भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करते हैं। फिर इच्छा भी होती है, जीव कभी इच्छा रह नहीं हो सकता, वो इच्छा अवश्य करेगा लेकिन इच्छा कन्वर्ट हो जाएगी अपनी संतुष्टि के बदले में भगवान को संतुष्ट करने में। तो ये सभी कुछ ऐसे साधन है जिनसे योग की परम संसिद्धिमयी अवस्था भक्ति या कृष्ण भावनामृत को संपन्न किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। श्री प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। अत्यंत ही सुंदर अध्याय था और इस अध्याय के शुरू में भगवान ने अर्जुन को कहा, अनाश्रितः कर्मफलम् कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निर्वर्तेन साक्रिया। अर्थात जो जीव अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त रहता है और अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। वो योगी नहीं है जो अग्नि नहीं जलाता है या कर्म नहीं करता। यानी भगवान ने पहले ही श्लोक में बता दिया कि आपको कार्य करने से नहीं रोकना है। योगी का मतलब ये नहीं है, सन्यासी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कार्य करना छोड़ दो। कार्य करो लेकिन क्या करो, अनाश्रितः कर्म फलम। तो उसके बाद भगवान ने योग आरोह और योग आरोरुक्ष दो बातें बताई कि आरोरुक्षो मुनिर् योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन, यानी कि अभी नया नया अगर हम भक्ति में आए हैं तो हम संन्यास नहीं ले सकते, हमें कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी। और योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना साधन। लेकिन भगवान ने अर्जुन को ये बताया कि आप अभी तक उस स्टेज पर नहीं हो कि आप सारे कर्मों का परित्याग करो। आपको क्या करना है, उद्धरेतात्मनात्मानम् नात्मानम् अवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मन्येव विपुरात्मनाम्। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे ना गिरने दे। मन बद्ध जीव आत्मा का मित्र भी है और शत्रु भी है। आत्मैव यात्मनो बंधुर, आत्मा यानी मन ही जीव का बंधु है और मन ही उसका शत्रु है। बंधु कब बनता है, भगवान कहते हैं बंधुरात्मा मनस्तस्य येनात्मैव आत्मनाजित अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है वो उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, लेकिन जो मन को जीत नहीं सका है मन उसका सबसे शक्तिशाली दुश्मन, सबसे बड़ा महाशत्रु है। और उसके बाद भगवान ने अष्टांग योग के द्वारा मन को कंट्रोल करने के कुछ उपाय बताए। अत्यंत ही सुंदर शब्द भगवान ने उच्चारण किए, शुचौदिशि प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मना नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रिय क्रिया उपवश्य सने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्ध्यते। अत्यंत ही महत्वपूर्ण भगवान ने बताया कि वास्तव में आपको क्या करना है, स्वच्छ जगह अच्छी जगह पर आपको जाके बैठना है और वो उस स्थान भूमि पर कुश बिछा कर और फिर उसके ऊपर मृगशाला उसे कपड़ा ढक कर मुलायम वस्त्र बिछा कर उस पर आसन लगा कर बैठना है। ना अति उच्चम ना अति नीचम, ना कोई बड़ा ज्यादा बड़ा होना चाहिए, पूरी बिल्डिंग के ऊपर तक नहीं होना चाहिए और ना ही एकदम नीचे हो। और यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों के को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। तो यहाँ पर बताया भगवान ने कि वास्तविकता क्या है, आपको क्या करना है, आत्मशुद्ध है, आपको अपनी शुद्धता के लिए ये कार्य करना है। जो भी आप ये कर रहे हो तो श्री रूपा जी ने बहुत अच्छा हमें समझाया कि यदि हृदय को पवित्र ही करना है, आत्मा को शुद्ध ही करना है तो इस संसार में इस कलयुग में एक ही तरीका है, क्या, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलैवनास्तैवनास्तैवनास्तैवगतिरन्यथा। भगवान ने फिर भी अर्जुन को योग अभ्यास के बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए कि आपको किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से सोना चाहिए। और भगवान ने बताया कि ज्यादा नहीं खाना चाहिए, कम नहीं खाना चाहिए, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना चाहिए। और यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्प्रहास सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते सदा। जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर होता है। यानी वास्तविकता क्या है, भगवान ने कहा कि आपको भौतिक इच्छाओं से दूर होना, ये सब जो कार्य कर रहे हो उसका मतलब ये है कि आप अपनी निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाओ। और आप कहाँ पर आओ, चित्तात्मन्येवावतिष्ठते, आत्मा के स्तर पर आना है आपको। और इच्छाएं समाप्त करके जैसे यथा दीपो निवासस्तो निंघते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्थ युंजतो योगमात्मना, कि जिस प्रकार जब वायु रहित स्थान में दीपक नहीं हिलता जलता, उसी प्रकार योगी का यदि मन वश में होगा तो वह आत्म तत्व पर ध्यान। अभी सबसे पहले भगवान ने मतलब मेन इसमें जितना भी बताया वो है मन को वश में करके भौतिक जितनी भी वस्तुएं हैं उनको उनकी इच्छा को खत्म करने के बारे में बताया। तो इतना सुनने के बाद और भी भगवान ने बहुत कुछ बताया, लेकिन श्लोक नंबर 33 में अर्जुन अब भगवान से एक प्रश्न करता है। भगवान को कहा योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वास्थितं स्थिराम्। हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह तो मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। चंचलम ही मन कृष्ण परमार्थी बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल उचंक्षण हठीला तथा अत्यंत ही बलवान है, अतः मुझे इसको वश में करना वायु को भी वश करने में से अधिक कठिन लगता है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं, मैं मानता हूँ अर्जुन असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यास न तो कौनते वैराग्य च उच्चते। आप मैं मानता हूँ कि मन को वश में करना बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन कठिन होना ये इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पॉसिबल है। आप अभ्यास करोगे और वैराग्य रखोगे हृदय में भौतिक वस्तुओं की, आकर्षण छोड़ोगे, आसक्ति खत्म करोगे और अभ्यास करोगे तो फिर ऐसा करना संभव है। ये भगवान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मन को वश में करना भले ही बहुत ज्यादा मुश्किल है, परंतु आगे भगवान बताते 36 में कि मुश्किल तो है परंतु आवश्यक भी है। क्यों? क्योंकि असंयतात्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायत। कि जिसका मन उच्छृंखल है यानी कंट्रोल में नहीं है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो सचमुच समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान ने अपना एक निर्णय दे दिया कि मन को यदि वश में नहीं किया तो फिर आत्म साक्षात्कार बहुत कठिन हो गया। यहाँ तक सुनने के बाद अर्जुन और भी ज्यादा घबरा गया, बोला अगर शुरू में मैंने मन को किसी ने वश में किया और भगवान की ओर आकर्षण अपना केंद्रित किया, लेकिन बाद में अर्जुन पूछते हैं 37 में आयति श्रद्धयोपेतो योग चलति मानस अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। कृष्ण जो ऐसा योगी हो जो असफल हो जाए योग में, प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण करे किंतु बाद में भौतिक इच्छाएं उस पर हावी हो जाए, तो अप्राप्य योग संसिद्धि, वो योग की संसिद्धि तो प्राप्त करेगा नहीं, तो उसकी गति क्या होगी? क्या वो बिछड़े हुए बादल की तरह बिछड़ जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा? अब ये मेरा संशय मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम भूत भविष्य वर्तमान को जानते हो और तुम्हारे अतिरिक्त मेरे इस संशय को कोई और दूर नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत ही सुंदर प्रोत्साहन दिया अर्जुन को कि नहीं अर्जुन ऐसा कभी नहीं होता। पार्थ नैवेह नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई वास्तविक कल्याण कार्य मार्ग में आता है तो वो उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। और वास्तविक कल्याण क्या है? कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य है। जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। भले ही बहुत ज्यादा कठिन लगे लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रयास करते हैं अपनी साधना को दृढ़ करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो वो हमारे लिए कल्याणकारी है। और भगवान ने कहा ये कार्य जो एक बार कर लेता है दुर्गतिम तात गच्छति, उसकी तो दुर्गति कभी हो ही नहीं सकती। और यदि वो थोड़ा सा भी प्रयास कर लेता है तो भगवान कहते 41 में प्राप्य पुण्य कृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समां शुचिनां श्रीमतां देहे योगो भ्रष्टो विजायते। अगर वो पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं भी करता तो भी जो पुण्य कृतां लोकान् होते हैं स्वर्ग लोकों में, उषित्वा शाश्वती बहुत बहुत समय के लिए वहां पर भेज दिए जाते हैं और पुनः जब संसार में भी आते हैं तो भी शुचि नाम श्रीमतांगे हैं योगो भ्रष्टो विजायते। अच्छे घर में, कुलीन खानदान में और धनवान परिवार में उनका जन्म होता है। अथवा योगी नाम एव कुल भवति धीमता एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। लेकिन अगर उसने बहुत ज्यादा योग में तरक्की कर ली है और बहुत आगे निकल गया है तो उसे ऐसे घर में जन्म मिलता है, इसे कुल में योगियों के कुल में, जहां पर पहुंचकर बस उसको अपनी साधना फौरन से री मेंटेन करने के लिए उसको अवसर प्राप्त होता है और बहुत जल्दी सिद्धि को प्राप्त करता है। और भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं तत्र तम बुद्धि संयोग लभते पार्वदैकम यतते च ततो भूय संसिद्धो गुरुनन्द। इस तरह की जब उसको इस जगह पे जन्म ले लेते हैं तो फिर फौरन से उसको पूर्वदेही नाम की जो स्मृति है वो प्राप्त होती है कि मैंने पिछले जन्म में इस तरह से किया था, अभी मुझे और आगे किसी भौतिक वस्तु में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। और आगे जब वो अपने पूर्व जन्म के दैवी चेतना के कारण यदि वो नहीं भी चाहता है तो स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है और आगे बहुत ही तीव्रता के साथ, बहुत ही तीव्र गति के साथ उन्नति करता है। और आगे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही विस्मयी कारण बात बताई। भगवान ने कहा तपस्वी भ्यो अधिको योगी ज्ञानी भ्योपी मतोदिक कर्मी व्यस्याधिको योगी तस्मात् योगी भवाशुन। योगी तपस्वियों से बढ़कर है, ज्ञानियों से तो और भी ज्यादा बढ़कर है, कर्मियों से तो बहुत ऊपर है, इसलिए क्या करो तस्मात् योगी भवार्जुन, इसलिए आपको योगी बनना है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि भगवान कौन सा वाला योगी बोल रहे हैं? वो योगी जिसको एक जंगल में जाकर तपस्या करते हैं और एक जगह पर बैठते हैं उस योगी के विषय में बोलते हैं जो मन में परमात्मा के विषय में ध्यान लगा रहे हैं, या उस योगी के विषय में? योग का मतलब होता है आपका रिलेशन जोड़ना। तो वास्तव में भगवान क्या उस योगी के बारे में बोलते हैं जो ब्रह्म निराकार के साथ अपना संबंध जोड़ रहे हैं। देखो भगवान की बात को क्लियर समझना चाहिए और भगवान इस बात को बहुत ही क्लियर आज के श्लोक में बता रहे हैं। योगी नाम अपि सर्वेषां मत्कतेनान्तरात्मनां श्रद्धावान् भजते यो मां समीयुक्त तमो मथा। योगी नाम अपि सर्वेषां मीन्स हु इज द ग्रेटेस्ट योगी। सर्वेषां का मतलब होता है सबसे ज्यादा उत्तम, सबसे ज्यादा ग्रेट योगी कौन सा है। मत्कतेनान्तरात्मना, जो अंतरात्मना का मतलब होता है अपने भीतर, अपने हृदय में, अपने आत्मा में क्या करता है, मत कते मेरे पराण होता है, सदैव मेरे विषय में सोचता है, केवल मेरे विषय में विचार करता है, केवल मुझसे प्रेम करता है। कौन कह रहा है, कृष्ण कह रहा है, मैंने तुम्हें कहा योगी बनो और मेरा मत सुनो, मेरा ओपिनियन सुनो कि योगियों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट योगी कौन सा होता है, मत गते नान्तरात्मना। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि वो भी तो सब तुमसे ही जुड़े हुए हैं ना, जो ब्रह्म के साथ जुड़े हुए हैं या परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी तो तुम्हारे ही फेसेस है ना। तो भगवान कहते हैं सावधान, किस तरह से जुड़ना है वो बताता हूँ मैं तुमको। श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धावान भजते, तो श्रील प्रभुपाद ने भजते शब्द को कितना सुंदर डिस्क्राइब किया कि भजते का मतलब केवल भगवान की भक्ति ही हो सकता है, भजते का मतलब वर्शिप नहीं होता हो, क्योंकि वो तो आप किसी की भी कर सकते हो, ब्रह्म की कर सकते हो, परमात्मा की कर सकते हो, लेकिन प्रेम आप केवल भगवान के साथ कर रहे हो। श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ अगर किसी के साथ संबंध जोड़ सकते हो तो केवल भगवान के साकार स्वरूप के साथ जोड़ सकते हो। और भगवान कहते हैं यो माम समे श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमता, जो मुझे स्मरण करता है, श्रद्धा से मेरा भजन करता है, कृष्ण की भक्ति करता है। और भगवान कहते हैं कि समय युक्त तमोमता, दिस इज माय ओपिनियन दैट ही इज द ग्रेटेस्ट योगी। क्योंकि भगवान ने यहाँ पर क्या कहा है, श्रद्धावान भजते यो माम। श्रद्धा का मतलब ये होता है नॉट ऑफिशियली, जैसे कोई कोई लोग यहाँ पर कोई भी काम हम कर रहे हैं, किसी के साथ भी कोई संबंध जोड़ा हुआ है तो ऑफिशियली, जैसे ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी हमारे वर्कर्स होते हैं, वो ऑफिस के बॉस के साथ उनका संबंध जो जुड़ा हुआ है, लेकिन केवल ऑफिशियली, देयर इज नो लव, देयर इज नो फीलिंग्स इन्वॉल्व देयर, है ना। कोई उनके साथ, कोई उनके साथ प्रेम का संबंध नहीं जोड़ा होता है, सिर्फ और सिर्फ वो इसीलिए अपने बॉस का आदर कर रहे होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी वो इस बात वो सैलरी देते हैं और उनकी विशेष को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर धर्म की परिभाषा क्या है आज हम देखें, तो जीव के पास धर्म की परिभाषा क्या है, हे भगवान अगर आप मुझे ये प्राप्त प्रदान करोगे तो मैं आपको ये इसकी बदली में आपकी भक्ति करूंगा, या भगवान अगर आप सच्चे हो तो मुझे ये प्रदान। एक बच्चा है ना, छोटा बच्चा, उसको भी हम क्या सिखाते हैं, जाओ भगवान के पास और भगवान को बोलो प्रणाम करो, भगवान मुझे एग्जामिनेशन में फर्स्ट पास करोगे तो मैं आपको कोई ना कोई ऐसे गिफ्ट या लालच दे दूंगा भगवान, फिर मैं आपके लिए प्रसाद कराऊंगा या ये कराऊंगा, इसमें कोई प्रेम नहीं है, ये तो केवल और केवल सौदाबाजी है। भगवान ने कहा ये नहीं चाहिए मुझे, मुझे तुम्हारी सौदागिरी की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम्हारे इन प्रलोभनों की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने साफ साफ कहा है श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तव मता। कृष्ण इज द ग्रेटेस्ट ऑथोरिटी, और कृष्ण के मत से बढ़कर और क्या किसी का मत हो सकता है। कृष्ण कहते हैं यदि आप मुझे श्रद्धा के साथ मेरा भजन करोगे तो वही ग्रेटेस्ट योगी है। अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है, देयर इज नो भक्ति, देयर इज नो, देयर इज नॉट फीलिंग, देयर इज नॉट लव, देयर इज नॉट भक्ति। कृष्ण कहते हैं जो मेरा भक्त है वही ग्रेटेस्ट योगी है। परंतु फिर भी आज के लोग योग साधना समझते किसको है कि बस अगर कुछ आसन आ गए भाई, इसको ये तो योगी है, इसको ये पेट अंदर करना आता है और है ना ये क्या करना आता है, सूक्ष्म बनना आता है, हल्का बनना आता है, ये योग नहीं है। ये तो केवल एक आसन है जिसके द्वारा आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हो। लेकिन भगवान क्या कहते हैं, श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तममता, जो समस्त श्रद्धा के साथ मेरे मेरे परायण होता है, केवल मेरे विषय में अपने अंदर सोचता है, मेरे बारे में मुझसे मुझसे प्रेम करता है, वही वास्तविक योगी है। और भगवान के साथ इस योग को जोड़ने के लिए भगवान ने बताया कि आपको मन को मुझ पर केंद्रित करना है। मन अगर मुझ पर केंद्रित होगा तो अवश्य बुद्धि भी केंद्रित होगी, क्योंकि मन वही मन जो इच्छा करता है बुद्धि उसी के लिए प्लानिंग करती है। लेकिन मन तो वैसे इंद्रियों के द्वारा इंद्रियां जो है वो अपने मन को केंद्रित कर देती हैं, अपने वश में कर देती हैं। वास्तव में इंद्रियों को शास्त्र जंगली घोड़े के समान बताते हैं कि जैसे जंगली घोड़ा होता है ना, उसको वश में करना कितना ज्यादा कठिन होता है ना। जो जंगली घोड़े को वश में करते हैं ना, उनको पता होता है कि इसको वश में करना बहुत कठिन होता है, लेकिन वहां पर तो फिर भी एक घोड़ा होता है। यहाँ पर इंद्रियां पांच पांच होती हैं, है ना। एक उधर भाग रही, आंख बोलती है मुझे वो देखना है, कान बोलता है मुझे वो सुनना है, नाक बोलता है सूंघना है, और जिह्वा बोलती है मुझे वो खाना है, स्पर्श बोलता है, स्पर्श इंद्रिय बोलती है मुझे इस चीज का आलिंगन करना है, और मन बेचारा परेशान हो जाता है, कभी उस इंद्रिय की ख्वाहिश पूरी करता है, कभी उस इंद्रिय की ख्वाहिश पूरी करता है, कभी उस इंद्रिय की ख्वाहिश पूरी करता है। और बुद्धि जान रही है, उसको मालूम है कि ये सब गलत है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती है, क्योंकि जो ये इंद्रिय रूपी घोड़े हैं ना, वो जबरदस्ती उस बुद्धि को और मन को अपने कंट्रोल में किए हुए हैं। ये कैसे है, जैसे आप एक ऐसी कार में बैठे हुए हो, उसको 100 की स्पीड में चला रहे हो और स्टीयरिंग घुमा रहे हो, तो कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। समझो अभी कोई कनेक्शन नहीं, बस घूम रहा है घूम रहा है, तो पता चला कुछ भी नहीं हो रहा है, और ब्रेक को दबाओ तो बस ऐसे ही ऊपर नीचे हो रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, आगे पर्वत है पीछे खाई है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, विवश हैं, क्योंकि हम तो खुद भी अंदर बैठे हुए हैं। तो उस समय क्या करना चाहिए, कैसे हम अपनी इस गाड़ी को एक्सीडेंट होने से बचाएं, उसका एक तरीका बताता है शास्त्र। कहता है समा सीताई पद पल्लवाप्लवम् महत्पदम् पुण्ययशो मुरारी भावाम्बुद्धि वत्सपदम् परम पदम् 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 यद्विपदाम् न तेषाम्। श्रीमद् भागवतम चैप्टर 10 कैंटो 10 चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 58। इसका मतलब ये है समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम, जिसने भगवान के चरण कमलों रूपी नाव का आश्रय ग्रहण कर लिया है। अगर उस कार को कंट्रोल किया गया, आश्रय मिल गया, एक ऐसा आश्रय प्राप्त हो जाए, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आश्रय उसको यदि प्राप्त हो जाए, तो वो कार रुक सकती है। तो यहाँ पर शास्त्र कहता है समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम, कैसा महत् पदम पुण्य यशो मुरारे, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यदि उसको एक ब्रेकर मिल जाए, तो फिर वो आगे ना खाई में गिरेगी ना पर्वत से टकराएगी। और यहाँ पर वो स्ट्रॉन्ग आश्रय बता रहे महत् पदम पुण्य यशो मुरारे, और वो आपका स्ट्रॉन्ग आश्रय, बहुत शक्तिमान का जो आश्रय है वो कौन है, भगवान के चरण कमल रूपी नाव। यदि किसी को भगवान के चरण कमल रूपी नाव का आश्रय मिल जाता है, तो क्या भवाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम, कि ये जो बहुत ही खतरनाक रास्ता है इस संसार में, जिसको तय करना पार करना अत्यंत ही कठिन है, परम पदम यत विपदा, हर वक्त हर जगह हर कदम पर एक विपदा आती है, सर्वत्र दुखम पश्चित, एक एक क्षण में यहाँ पर दुख आते हैं तो वो कैसा बन जाता है? भवान बुद्धि वत्स पदम, ये तो कितना बन जाता है, छोटा सा जो गाय का वत्स होता है वो यदि दरिया के किनारे पर चलता है तो उसके खुर में जितना पानी आता है ना, उस पानी को लांघने में कोई मेहनत नहीं लगती, कोई छोटा सा बच्चा भी उसको आसानी से पार कर सकता है। तो ये इतना बड़ा भव सागर, इतना बड़ा कठिन रास्ता, वो इतना गौखुर में समाये हुए जल के समान बन जाता है और उसको आप बहुत ही सरलता से पार कर सकते हो। कब? जब आप भगवान के चरण कमल का आश्रय लेते हो। और पदम पदम यत विपदा नतेश, फिर उसके लिए कोई विपदा नहीं है। अब ये अंतिम प्रश्न है कि उस भगवान के चरणों का आश्रय हम कैसे लें, कैसे हम इस भाव सागर को पार करने के योग्य बने? तो वो है भक्ति के रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भक्ति की छोटी छोटी भी जो नियम है उसको हमें इतना दृढ़ता के साथ, इतना प्रेम के साथ, इतना श्रद्धा, जैसे भगवान ने कहा है श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। भगवान के जो आचार्य हैं, जो हमारे गुरु हैं, उन्होंने जो नियम दिए हैं, और सबसे बड़ा महान नियम क्या है, सारे जितने भी नियम्स हैं वो एक नियम के किंकर हैं। जानते हैं वो क्या है? स्मृतव्यम सततम विष्णु विस्मृतव्य न जाति चेत सर्वे विद्धि निषेधाय चिरे तयो रेव किंकर। कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण, नेवर फॉरगेट हिम। सारे जितने भी विधि और निषेध हैं वो इस एक रूल के किंकर हैं, उसके सेवक हैं। क्या? कि हमें सदैव भगवान को याद करना है और एक क्षण के लिए भी उन्हें भूलना नहीं है। और उसका एक सरल उपाय है महामंत्र का जप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि हम इस महामंत्र के साथ जुड़ जाएंगे तो हम अवश्य सदैव भगवान को याद कर सकेंगे। लेकिन इस महामंत्र को जुड़ने की, इसके साथ जुड़ने के लिए भी एक उपाय है। वो क्या है? यदि हम श्रवण नहीं करेंगे तो फिर महामंत्र के साथ हमारा संबंध भी इतना गहरा नहीं होगा। इसलिए हमें सदैव शुद्ध भक्तों से भगवान के विषय में, शास्त्रों के विषय में श्रवण करना चाहिए। जितना हम श्रवण करेंगे उतना ही हम इस महामंत्र के साथ जुड़ेंगे, और जितना हम भगवान के इस पवित्र नाम, पवित्र कथाओं, पवित्र लीलाओं के साथ जुड़ेंगे उतना ही हमारा भगवान के साथ योग जो है वो और भी दृढ़ हो जाएगा। और भगवान ये कह रहे हैं कि योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नान्तरात्मना, जो सदैव मेरे विषय में सोचता है, मेरे बारे में विचार करता है, कैसे करेंगे? जब श्रवण करेंगे। कैसे करेंगे? जब जप करेंगे। और भगवान कहते हैं श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। जो श्रद्धा के साथ मेरा भजन करते हैं, मेरा ये मत है कि सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ योगी वही है, और उस वही मुझे प्राप्त कर सकता है, वही मुझसे युक्त है और सबों में सर्वश्रेष्ठ है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा। मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी साधना और अपनी सेवाओं को अच्छे से कर सकूं। आप प्रार्थना नहीं करते हो ना, इसीलिए देखो श्लोक आने में कितने दिन हो जाते हैं। मैं बहुत साधारण जीव हूँ, बहुत अपराधी हूँ। भगवान ने किसी तरह से प्रसन्न होकर गुरु और गौरंग की कृपा से मुझे ये सेवा मिली है, और इस सेवा में मुझे आप सबकी सहायता की आवश्यकता है। एक बार भगवान के सामने खड़े होकर मेरे लिए महामंत्र जप, एक महामंत्र उच्चारण कर लिया करो कि भगवान दीदी को अपनी सेवा करने में सहायता करो ताकि वो अच्छे से कर सके, क्योंकि आपकी प्रार्थना से मुझे बल मिलता है। हरे कृष्ण।